हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवतम क्लास फर्स्ट कैंटो चैप्टर 15 श्लोक नंबर 12 गिवन इन द्वारका टेंपल ऑन 1 मार्च 2016 बाय माई सेल्फ प्रशांत मुकुंद दास।
राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वन चार यमुना तीरा वन यमुना तीरा वर चारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय रुक्मणी द्वारकाधीश रुक्मणी द्वारकाधीश जय रुक्मणी द्वारकाधीश जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन जय गौरा गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद नीताय गौरा हरि बोल हरि बोल नीताय गौरा हरि बोल नीताय गौर हरि
श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश भगवान की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की श्री श्री पंचतत्व गौर निताय की पतित पावन श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की ग्रंथरा श्रीमद भागवतम की निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर् भक्ति नष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः हरे कृष्णा। सो आप सबका स्वागत है आज के सुप्रभात कक्षा में। तो आज का हमारा जो स्कंद है एक अध्याय 15 और श्लोक संख्या 12, तो इसमें बोलने का प्रयास करेंगे साथ ही में। यत् तेजसात भगवान युद्ध शूल पाणी विस्मर्पित सा गिरिजो अस्त्रम मदात निजमे अन्यापि चाहं मनुनेव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महता आसनर्धम् यत् तेजसात भगवान युद्ध शूल पाणी विस्मापितं स गिरजो अस्त्रं मदात निजमे अन्योऽपि च मामुनेव कलेवरेणे प्राप्तो महेन्द्र भवने महादासनर्धम् यते तेजसात भगवान युद्ध शूल पाणी
विस्मर्पितं सागिरेजो अस्त्रं दात निजमे अन्योऽपि च मामुनेव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने मदासानर्धम् यत्तेजसात भगवान् युद्धशूलपाणि अर्पितं सागिरजोऽस्त्रधाम अन्येऽपि च मुनेव कलेवरेण भगवान् युद्धशूलपाणि विस्मापितं सा गिरजोऽस्त्रमादामि जमे अन्ये अपि च ममेव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्धम् माताजी यत्तेजसात् भगवान् युद्धशूलपाणि कृष्णा। तो अभी हम इसका अनुवाद पढ़ेंगे, साथ में दोहरा सकते हैं। ये उन्हीं का प्रताप था कि मैं एक युद्ध में शिवजी तथा उनकी पत्नी पर्वतराज हिमालय की कन्या को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। इस तरह वे शिवजी मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना निजी अस्त्र प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट किए और इसके अतिरिक्त मैं इस वर्तमान शरीर से स्वर्ग लोक पहुंच सका, जहां मुझे आधे ऊंचे आसन पर बैठने दिया गया। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की। तो थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिएगा, दो पेज का तात्पर्य है। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर इसकी व्याख्यान करी है, फिर हम इस पर प्रयास करेंगे चर्चा करने का। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से शिवजी समेत सारे देवता अर्जुन से प्रसन्न थे। भाव ये है कि जिस किसी पर शिवजी की या किसी अन्य देवता की कृपा होती है, उस पर भगवान श्री कृष्ण की भी कृपा हो ऐसा आवश्यक नहीं है। रावण निश्चित रूप से शिव जी का महान भक्त था, किंतु वह भगवान रामचंद्र के क्रोध से बच नहीं पाया। और पुराणों में ऐसी अनेक घटनाएं भरी पड़ी हैं, किंतु यहाँ पर एक ऐसा उदाहरण मिलता है जिसमें शिव जी अर्जुन से युद्ध करके भी प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर के भक्त जानते हैं कि देवताओं का सम्मान किस तरह किया जाए, किंतु देवताओं के भक्त कभी कभी मूर्खतावश ऐसा सोचते हैं कि भगवान देवताओं से बड़े नहीं है। ऐसी धारणा से मनुष्य अपराधी बन जाता है और उसका अंत वैसे ही होता है जैसे रावण तथा अन्यों का हुआ। भगवान श्री कृष्ण के साथ साख्य भाव में संपन्न कार्यों का अर्जुन द्वारा किया गया उल्लेख उन सबों के लिए शिक्षा प्रद है जो इस शिक्षा से आश्वस्त है कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करके अन्य सारे वर प्राप्त किए जा सकते हैं। किंतु देवताओं के भक्त या पूजक केवल आंशिक लाभ होगा जो खुद देवताओं को ही भांति विनाशशील होगा। इस श्लोक की दूसरी महत्ता यह है कि भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन इस शरीर से स्वर्ग लोक पहुंच सके, जहां स्वर्ग के देवता इंद्रदेव ने आधे ऊंचे सिंहासन पर अपने साथ बिठाकर उन्हें सम्मानित किया। कोई मनुष्य पुण्य कर्मों से स्वर्ग लोक पहुंच सकता है, जैसा कि सकाम कर्मों की श्रेणी में शास्त्र का अभिमत है। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, जब ऐसे पुण्य कर्मों का फल क्षीण हो जाता है तब भोक्ता को पुनः पृथ्वी लोक पर ला गिराया जाता है। चंद्रमा भी स्वर्गीय ग्रहों के समान स्तर पर है और जिन लोगों ने यज्ञ संपन्न करके दान देकर कठोर तपस्या करके पुण्य अर्जित किए हैं, उन्हें शरीर की आयु पूरी होने के बाद स्वर्ग लोक में प्रविष्ट होने दिया जाएगा। अर्जुन को उसी शरीर में स्वर्ग में प्रविष्ट होने दिया गया जो केवल भगवत कृपा का प्रसाद था, अन्यथा ऐसा होना संभव नहीं है। आधुनिक विज्ञानियों द्वारा स्वर्ग लोक में प्रवेश करने के सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध होंगे, क्योंकि ऐसा विज्ञानी अर्जुन के समान स्तर पर नहीं है। वे तो सामान्य मनुष्य है जो यज्ञ दान तप की निधि से विहीन है। ये भौतिक शरीर प्रकृति के तीन गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से प्रभावित होता रहता है। आधुनिक प्रजा न्यूनाधिक रूप से रजोगुण तथा तमोगुण से प्रभावित है और इस प्रभाव के लक्षण उनके अत्यंत कामुक तथा लोभी होने के प्रकट होते हैं। ऐसा प्रतीत ऐसे पतित लोग मुश्किल से स्वर्ग लोक पहुंच सकेंगे। स्वर्ग लोक के ऊपर भी अन्य लोक हैं, जहां केवल सत्वगुणी जीव ही पहुंच सकता है। इस ब्रह्मांड में स्वर्ग तथा अन्य लोकों के निवासी अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, मनुष्यों से कई गुना अधिक, और वे एक सिर बढ़कर एक सत्वगुणी होते हैं। सब भगवान के भक्त होते हैं, यदि भी उनका सत्वगुण विशुद्ध नहीं होता तो भी वे देवता कहलाते हैं, जिनमें इस भौतिक जगत में संभव अधिकतम मात्रा में सद्गुण पाए जाते हैं। ओम ज्ञान तिम्रंदस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वब्दकांतिकं। वंदेहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्री रूपम सागर जातम सहगन रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्णा पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे वंचा कल्पतरूभ्य कृपा सिंधुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्णा। तो यहाँ जो चर्चा हो रही है कि अर्जुन के पास बहुत सारे अस्त्र हैं और अर्जुन यहाँ पर वर्णन आ रहा है, बताते हैं कि उन्हें शिवजी से और उनकी पत्नी पार्वती से कुछ अस्त्र प्राप्त हुए और कुछ अनेक देवताओं से, क्योंकि महाभारत के बारे में वर्णन आप सुन रहे हैं काफी दिनों से, इस अध्याय में बताया जा रहा है कि पांडवों की सम्यक निवृत्ति, किस तरह से उनकी निवृत्ति हुई संसार से। उससे पहले महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले जुआ खेला गया था और जुआ खेलने में द्रौपदी को जब वो हार गए और ऐसी स्थिति थी कि उसके बाद उनका सब कुछ छीन लिया गया और बहुत ही बेइज्जत होकर उनको वहां से इंद्रप्रस्थ से निकाला गया। तो घूम रहे हैं जंगलों में, तो बताते हैं कि दिल्ली शहर इंद्रप्रस्थ है और यहाँ से थोड़ा आगे चलकर पांडवा वृंदावन की ओर चल रहे हैं, है ना। और कुछ बताते हैं कि बाद में सबसे पहले वो गए हैं इधर वृंदावन दिल्ली से मथुरा की साइड, उसके बाद कामावन, 5 वर्ष कामावन में रहने के बाद फिर वापसी हिमालय की तरफ गए हैं और हिमालय पर फिर चढ़ते चले गए और अपने अंतकाल में हिमालय पर जाकर उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। लेकिन जब वो जा रहे हैं हिमालय की ओर, तो अर्जुन जानते थे इस बात को, क्योंकि वो बहुत बड़े योद्धा थे, कि अगर भगवान की कृपा हो तो मुझे काफी अस्त्र प्राप्त हो सकते हैं और जिनसे हम इस युद्ध को जीत सकते हैं। वैसे तो वो ये बात जानते थे कि जहां पर भगवान कृष्ण है विजय तो उनकी संभव है। जब पूछा गया कि दुर्योधन से और अर्जुन से तुमको कौन चाहिए, तो भगवान जो थे उन्होंने पूछा, बताओ दुर्योधन तुम्हारा क्या निर्णय, तुम क्या चाहते हो, किसको लेना चाहते हो। तो उसने कहा, भाई पहले बताइए, डिस्क्रिप्शन डिटेल में बताइए क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, देखो मैं जिस साइड में रहूंगा उस साइड में सिर्फ गाइडेंस दे सकता हूं, ना मैं अस्त्र उठाऊंगा, ना शस्त्र उठाऊंगा, ना मैं युद्ध करूंगा। उन्होंने कहा, एक तो ग्वाला, ऊपर से भी युद्ध नहीं करेगा, किस काम का है बताओ इसको। और मेरी जो सेना है द्वारकाधीश, जहां द्वारका के राजा है द्वारकाधीश, उनकी सेना है, वो सेना अगर चाहिए तो वो सेना ले लो। तो कई अक्षुणी सेना उनको बोला गया कि तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन एक तरफ सेना एक तरफ मैं। तो पांडव क्या बोले, अर्जुन बोले, भगवान हमें तो आप चाहिए। तो जो भक्त होता है वो कहता है, मुझे संसार का भौतिक साम्राज्य नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कृष्ण आप चाहिए। भगवद गीता में कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर्भूति भवती। तो बताते हैं वहां पर विजय होती है उस व्यक्ति की जहां पर कौन है, यत्र योगेश्वर कृष्णा तत्र पार्थ धनुर्धरा, और जहां पर धनुर्धर अर्जुन है तत्र श्री विजयोर्भूति, वहां पर विजय जरूर होगी उस व्यक्ति की। और ये ध्रुव नीति इर्मतिर्मा, ये ध्रुव की नीति है। ध्रुव ने भी इस बात को सिद्ध किया कि कृष्ण की भक्ति के अलावा और संसार में अन्य देवी देवताओं की भक्ति कुछ भी नहीं है। इकला ईश्वर कृष्णा आर सब भ्रत यारे इच्छे नचाए से ताचे करे नृत्य। इस संसार में कृष्ण बस ईश्वर है, बाकी सब भ्रत उनके दास है। उन्हीं की इच्छा से संसार में लोग देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, फिर वहां से धक्के खाते हैं, फिर दुखी होते हैं, फिर इधर आते हैं। लेकिन इतना सब जानने के बाद भी उन्हें दुर्योधन ने किसको चुन लिया, सेना को चुन लिया। भौतिकवादी व्यक्ति यही सोचता है साम्राज्य मिल जाएगा तो मैं अपनी शक्ति से जीत जाऊंगा, लेकिन वो जानता नहीं है कि जयस्ते पांडु पुत्राणाम, पांडु पुत्रों की जय होने वाली है क्योंकि उनके पास कौन है, जनार्दन, जनों में जो जनों का पालन करने वाले जनार्दन है वो वहां पर विराजमान है। तो ये बात समझ में नहीं आ रही थी। अब अर्जुन जब कृष्ण भगवान को ले लिए साथ में, अब उनके पास सेना नहीं है, कुछ सेना है, बताते हैं 16 अक्षुणी सेना में से 11 अक्षुणी सेना है दुर्योधन की साइड और 5 अक्षुणी सेना है अर्जुन की साइड है, और उसमें अर्जुन के पास और कुछ नहीं है, बस कौन है, कृष्ण है। युधिष्ठिर भगवान पांडवास के पास में क्या है, भगवान कृष्ण है। तो अब ये जाते हैं मांगने के लिए अस्त्र शस्त्र, कहते हैं अब लड़ाई करनी है तो तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। तो जब तैयारी करने जाते हैं तो जिस तरह से श्रील प्रभुपाद जी ने तैयारी करी पहले, तो हर एक भक्त को तैयारी करके जाना चाहिए, है ना। जैसे अब देखा गया है प्रचार में भक्त चले जाते हैं, शास्त्र नहीं पढ़ते या प्रवचन देने के लिए उनको अगर मौका दिया जाता है कि आप बोलिए भगवान के बारे में, तो सोचते हैं अरे ये तो टेंशन हो गई है, भगवान के बारे में बोलना पड़ेगा, तो चलो कुछ कोशिश करूंगा, जो सुना सुनाया है थोड़ा बहुत प्रयास करके बोल दूंगा। मैं एक प्रवचन में सुन रहा था, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज बोल रहे थे कि एक प्रवचन देने से पहले, महाराज इतने साल से प्रचार कर रहे हैं 40 सालों से, मैं 7 घंटे एक प्रवचन के लिए पढ़ता हूं, 7 आवर्स एक प्रवचन के लिए, चाहे भक्त 10 हो या 1000 उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर आपको मौका दिया है कृष्ण का गुणगान करने के लिए, तो उसके लिए ये नहीं सोचना चाहिए अरे है लोगों से बोले ना अरे मेरे पास टाइम नहीं, मुझे पढ़ना है कल भागवतम क्लास है, अरे प्रभु जी बहुत दिन हो गए पढ़ते हुए, अब क्या पढ़ने की जरूरत है। तो ऐसा भाव भी आ जाता है भक्त में भी, अब मुझे क्या जरूरत है पढ़ने की, बहुत पढ़ लिया, बहुत सुन लिया, उसी में से कुछ 2-4 सुना दूंगा, टाइम निकल जाएगा 1 घंटे, या तो तात्पर्य इतने बड़े बड़े धीरे धीरे पढ़ूंगा तो टाइम निकल जाएगा। लेकिन तैयारी करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने जाने से पहले विदेश 6 साल राधा दामोदर मंदिर में बैठकर ग्रंथों की रचना करी, पहले शस्त्र तैयार किए शास्त्र के रूप में, उसके बाद मायावादी के गुट में घुसकर उनका विनाश करा। एक भक्त बता रहे थे अपने प्रवचन के दौरान कि प्रभुपाद जी जैसा सोल्जर तो आज तक हुआ ही नहीं है, क्यों, क्योंकि प्रभुपाद जी ने ऐसा कार्य किया जिस सेना से लड़ने जा रहे हैं उसी सेना के सोल्जर्स को अपनी साइड में लेकर फिर युद्ध कर रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है हम जाएं हमारे पास सोल्जर्स ना हो, बॉर्डर पे खड़े हो जाएं, पाकिस्तान वालों को थोड़ा सा प्रवचन दें, पाकिस्तान वालों को थोड़ा आधे इधर आ जाएं और फिर उन्हीं से फायरिंग करा के उनके लोगों को मरवा दें। तो यही तो किया प्रभुपाद जी ने, जाकर प्रवचन किया, वहां के अंग्रेजी भक्तों को, विदेशी भक्तों को भक्त बनाया और उन्हीं के द्वारा फिर साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सबको प्रीचिंग किया। ऐसा किसी ने नहीं किया आज तक। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय, प्रभुपाद जी ऐसा कोई नहीं हो सकता। तो यही अर्जुन जो है, भक्त जो है वो जानते हैं कि युद्ध से ज्यादा इंपॉर्टेंट है युद्ध की तैयारी, है ना। जैसे भक्त जो है ना ध्यान पूर्वक जप साधन ये सब शास्त्र पढ़ने में सोचते हैं इसमें क्या है, अब तो हम भक्त बन गए, तिलक लगाने लगे, मंदिर आने लगे, बहुत सारे भक्तों का संग मिल रहा है, मैं बच जाऊंगा। लेकिन जब तक वो सिंसियर नहीं है किसी भी चीज के प्रति तब तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माया जो है वो हर टाइम गोली चला रही है, कितने घंटे, 24 घंटे, और हम कितने घंटे गोलियां चलाते हैं अपनी माला की, 2 घंटे 2.5 घंटे मैक्सिमम 3 घंटे। माया एक तरफ 24 घंटे गोली चला रही है और हम चला रहे हैं 3 घंटे, तो कौन जीतेगा, हाँ जी माया जीत जाएगी। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं डिवोटी शुड बी 24 आवर डिवोटी, हर वक्त गोली चलाने का प्रयास करता है। ठीक है, जपमाला में समाप्त हो गया तो मुख में जो जिह्वा दी है जिसमें हड्डी भी नहीं है उसको ऊपर नीचे घुमाते रहना चाहिए और क्या बोलना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अर्जुन ने हिमालय में जाकर ऋषि मुनियों के आश्रम में बैठकर शस्त्र अस्त्र प्राप्त करने के लिए देवताओं की पूजा करी भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार। तो भक्त जो है वो जो कुछ भी कर रहा है अगर देवता के शरण में भी जा रहा है तो किसके आदेश अनुसार, भगवान के आदेश अनुसार। भगवान ने कहा जाओ अग्निदेव की प्रार्थना करो, उससे तुम्हें क्या मिल जाएगा, गांडीव मिल जाएगा। तो अग्नि की प्रार्थना करने पर, अग्नि की पूजा करने पर, अग्नि जो देव थे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए सुदर्शन प्रदान किया और अर्जुन जो थे उनको गांडीव प्रदान किया। नर और नारायण के रूप में वो अग्निदेव गए थे उनको प्रदान करने, वो लंबी कथा है। लेकिन बाद में जब उनको पता चला नर और नारायण जो बद्री का आश्रम में सदा तपस्या में लीन रहते वही सतयुग के भगवान द्वापर में अर्जुन और कृष्ण बनकर आए हैं, तो अर्जुन को गांडीव प्रदान किया। और फिर इसी प्रकार से प्रार्थना करने के लिए वो जब ऋषि मुनि आश्रमों में गए हिमालय की ओर तो उनको बोला गया आप बैठ कर यहाँ पर तपस्या करिए, ऑस्टेरिटी। तो भक्त का एक मूल ऑस्टेरिटी भी है तपस्या, उसको तपस्या करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। कोई व्रत आते हैं जैसे एकादशी है या अनेकों फेस्टिवल्स आते हैं, अभी निर्जला एकादशी है, या प्रयास करना चाहिए अगर हम बिना पानी पिए काफी देर तक रह सकते हैं तो वो प्रयास करना चाहिए। अगर पानी पी के थोड़ी देर रह सकते हैं तो पानी पिए, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं तो फ्रूट खाके, जैसे भी करके मतलब कुछ ऑस्टेरिटी आपको करनी चाहिए। तपस्या बिन जो है ना फल प्राप्त नहीं होने वाला है। हाँ, जैसे अभी परसों भक्ति सिद्धांत महाराज का जब अपीयरेंस डे था तो उसमें ग्लोरीज में अभी गुणगान कर रहे थे, भक्ति सिद्धांत महाराज ने गौड़िया मठों की स्थापना करने के लिए 10 सालों तक लगातार रोज 300,000 मालाओं का जप किया। अगर हम चाहते हैं रुक्मणी द्वारकाधीश मंदिर यहाँ आए, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में भगवान कृष्ण आए, तो जो जनरल भक्ति है ना 16 माला का जप, 1 घंटे रीडिंग और 1 घंटे हियरिंग, प्रभु जी बस इतना काफी है, लोग इतना भी नहीं कर रहे हैं। अगर इतना भी कर रहे हैं ये भी जनरल है। अगर तपस्या करनी है, भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है, यहाँ पर मंदिर प्रकट करना है, तो एक्सट्रीम सेवाएं जो कोई नहीं कर सकता ऐसी सेवाएं करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, ऐसे कार्य करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के भक्त थे, प्रभुपाद जी ने बोला गो इन रशिया एंड प्रीच, रशिया में सारे लोग मुसलमान क्रिश्चियंस, वहां पर कोई हिंदू धर्म को जानने वाला नहीं, और क्या प्रीच करना है, भगवद गीता, हरिनाम, प्रसाद। तो भक्त क्या करते थे, यूगोस्लाविया के अंदर पृथुदास नाम के एक डिवोटी थे, उनको बोला गया कि आप जाइए प्रीचिंग करने रशिया में। अभी यूगोस्लाविया जा रहे हैं और वहां पर बैरिकेडिंग्स लगाए हुए हैं, वहां की जो केजीबी थी रशिया की ना सीआईडी, उसने कहा यहां से कोई हिंदू धर्म का जो प्रचार चल रहा है ना उसको रोको, ब्लॉक करो यहाँ पे। तो भक्तों ने क्या किया, गीता को गाड़ी के सीट के नीचे छुपाया और उसके बाद बैरिकेडिंग क्रॉस कर रहे थे तो उन्होंने पकड़ लिया, अपनी वैन चेक कराओ, कुछ कॉन्स्पिरेंसी लग रही है यहाँ पर, कुछ तो है, समथिंग इज फिशी हियर, कुछ तो है यहाँ पर। चेकिंग किया पूरा, पता चला गीता निकल आई, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें जेल में डाल देंगे, ये हिंदू पुस्तकों का एक बार छोड़ रहे हैं, और फिर बैरिकेटिंग से उन्हें वापस कर दिया, हम बाहर नहीं जाने देंगे आपको। अब बॉर्डर कैसे क्रॉस हो प्रीचिंग करने के लिए, प्रभुपाद जी का आदेश है। तो भी वो सोचने लगे जो भक्त होता है और जो राक्षस होता है, भक्त तो राक्षस दो ही है, या तो भक्त है या फिर राक्षस, कोई ये नहीं कह सकता अजी हम ना कृष्ण के भक्त नहीं है, हम ना हम देवी देवताओं के भक्त हैं, हम इधर उधर के भक्त हैं, हम बाबा जी के भक्त हैं, हम निराकारी हैं, ये सब फालतू है। जो विष्णु भक्त नहीं है भागवतम कहती है वो असुर है, सिंपल एक ही लाइन में खत्म कर देते हैं। तो जो सुर है, जो देवता है, वो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, और भक्ति करने के साथ साथ जो भक्त होते हैं वो परेशानी आने पर क्या करते हैं, भगवान के नामों का जप करते हैं, भगवान की शरण में आते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तो राक्षस जो थे वो घबरा रहे थे क्या होगा कैसे होगा, लेकिन भक्त जो थे वो भगवान की शरण में गए। जब भगवान ने जो बोला कि भाई मंथन करो, तो उसका जो मथनी थी वो भी जब समुद्र के अंदर जा रही थी तो भगवान कच्छप अवतार लेने के लिए आए, किसके आग्रह पर, भक्तों के आग्रह पर, देवताओं के कहने पर। तो भगवान आते हैं भक्तों के कहने पर। तो ये भक्त का गुण है, जब परिस्थितियां विपरीत हो तो उसका हाथ माला के अंदर जाना चाहिए, अरे
घर में प्रॉब्लम आ गई, ओह हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, लेकिन उल्टा होता है। जैसी प्रॉब्लम आती है हमारे घर में, मेंटल टेंपल कुछ भी प्रॉब्लम आती है, किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, आज मेरे साथ कुछ बुरा हो गया, किसी ने मेरे बारे में क्रिटिसिज्म कर दिया, तो मैं ना माला में मन नहीं लगता, क्या यार कैसे सॉल्व करूं, एक बार टेंशन फ्री हो जाऊं फिर शाम को आराम से बैठ के माला करूंगा। ये गलती है, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। भक्ति रसामृत महाराज से एक ब्रह्मचारी भक्त पूछ रहे थे अपने प्रवचन के दौरान, महाराज अब मैं तो ब्रह्मचारी बन गया हूं, मैंने सैफ्रन क्लॉथ ले लिया है मंदिर में, फुल टाइम सेवा भी कर रहा हूं, पिछले 13 साल से ब्रह्मचारी बनने का प्रयास कर रहा था, आज सैफ्रन ले लिया मैंने, अब आप मुझे बताइए ऐसा कोई ट्रिक जिससे मैं सूदिंग भक्ति कर सकूं, आरामदायक भक्ति कि सुबह सुबह अगरू की खुशबू आ रही हो और कोई टेंशन ना हो पूरा दिन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम, कोई परेशानी ना हो, ना बीमारी शारीरिक ना भौतिक, ना आदि दैविक ना आदि भौतिक ना आदि आत्मिक, कोई दुख ना हो। तो महाराज ने डंडा लिया अपना, उठ के चल दिया। तो ब्रह्मचारी बोला क्वेश्चन का जवाब ही नहीं, तो इतनी बेइज्जती। तो जब पीछे पीछे क्या बोला, महाराज महाराज बताइए बताइए, तो महाराज योर क्वेश्चन इज रॉन्ग, दिस प्लेस इज नोन एज दुखालयम अशाश्वतम, इस जगत को दुखालयम अशाश्वतम कहते हैं। यहां पर कोई सोचे आज तुम्हारा अच्छी नहीं हुई, कल सुबह से ना अटेंटिव करूंगा ना, मतलब कल तो भगवान को नीचे बुला के रहूंगा, उसी दिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, पेट दर्द हो गया सुबह सुबह, आजमा खराब, ऐसी ऐसी दिक्कतें आएंगी, व्यक्ति कर ही बात, तो जो है ना ऐसी परिस्थिति में ही जप करना पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति में ही सेवा करनी पड़ेगी। वो आनंद की स्थिति शरीर छोड़ने के बाद आ जाए तो आ जाए, पहले तो मुश्किल है दुखालम संसार में। वो आनंद तब आएगा जब हम बाहर मुख होने की बजाय अंदर मुख हो जाएं, है ना। तो इस तरह से जो भक्त थे वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, और उसका साक्षात उदाहरण है हिजोलिनस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। महाराज अब महाराज के बारे में बताते हैं भक्त कि एक बार महाराज दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे थे किसी लैंड के प्रॉब्लम के कारण। जब जा रहे थे तो भक्त जो थे ना वो महाराज को पेपर्स दिखा रहे हैं, सब चीजें दिखा रहे हैं कि महाराज ये देखिए महाराज ये देखिए, और महाराज क्या कर रहे थे, बार बार बीड बैग में हाथ डाल रहे थे, माला करते थे, फिर भक्त को डिस्टर्ब करते थे, महाराज फिर बीच में बोलने के लिए रुकते थे, फिर माला करते थे। भक्त बोले महाराज कितनी माला कर रहे, 64 हो गई, 128 हो गई, कितनी माला कर रहे, सुबह से माला करे जा रहे। तो भक्त का गुण है कि जब परेशानियां आए तो उसका हाथ माला के अंदर, जब असुर है उसका हाथ माला से बाहर। तो हम देख सकते हैं हम पूरे दिन में असुर है या भक्त, हम चेक कर सकते हैं रियलाइजेशन। तो इस तरह से जो भक्त थे योगो सलाव्य जाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। इतनी देर में देखा एक मोटा सा कुत्ता आकर उनके प्रसादम के पीछे ना सूंघने लगा, ऐसे कर रहा है, तो खिचड़ी प्रसाद था रखा हुआ था पीछे और सूंघ रहा है। उन्होंने कहा वो भगवान ने कुछ भेज दिया तरीका, और फिर उन्होंने क्या किया उसको फीड किया आत्मा समझते हुए है, और उसको जब फीडिंग किया उसके बाद उस कुत्ते को ऊपर बिठा लिया गाड़ी के अंदर वैन में भक्तों ने, और फिर उसको ऐसे ऐसे प्यार करने लगे और दूसरे बैरिकेटिंग से निकलना चाहा। तो प्रतुदास प्रभु बता रहे थे हमने प्रवचन के दौरान कि हमने क्या किया, जब निकलने लगे उसके अंदर से तो पुलिस ने पकड़ लिया, केजीबी ने, कह रहे कुत्ता बॉर्डर से पार नहीं जा सकता। अच्छा ये तुम्हारा बहुत प्रिय है, इसके बिना तो हम रह नहीं सकते। नहीं 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 आपको जाना है, जाइए, कुत्ता बिल्कुल नहीं जा सकता। कह रहे ठीक है ले लो बाड़ी पार, भगवत गीता तो नीचे थी, चेक ही नहीं किया, बिकॉज आर्ग्यूमेंट में इतना टाइम गुजर गया कुत्ता 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 कि कुत्ता लेके वो केजीबी वाले चले गए और गाड़ियां गीता लेके चले गए, तो भक्त देखो बच गए। तो इस तरह से भक्त जो है समझदार होते हैं, हर परिस्थिति का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो अर्जुन ने भी जाकर तपस्या करी ऋषि मुनियों के आश्रम में बैठकर, और फिर उन्होंने देखा इतनी देर में कि एक बोर को हिंदी में कहते हैं सुअर जो था वो आया वहां पर, है ना, भालू बियर होता है भालू, बोर इज जंगली सुअर, हाँ जंगली सुअर वहां पर आया, हाँ, और आने के बाद में ऐसी आवाजें निकाल रहा है। अब अर्जुन जो सोच रहे हैं कि ना मैं जो गांडीवधारी अर्जुन एक बाण में मैं पानी प्रकट कर दूं, हवाओं को रोक दूं, ऐसे व्यक्ति को आश्रम में एक सुअर घुसाया और मैं इसे नहीं रोक पा रहा, हाँ, तो उन्होंने क्या किया ऐसे करके एक तीर निकाला और करके मारा। वो थाकवान सुअर, तो बताते हैं वो मुका नाम का एक राक्षस था जो कि दुर्योधन का मित्र था। दुर्योधन ने कहा ये तपस्या करके अस्त्र लेना चाहता है, जाओ मुका मेरे मित्र, आज मौका मिला है तुम्हें मुका कि जाओ, हा? इसको उससे अर्जुन से जाकर मुकालात करो, मुकालात मतलब मुलाकात करो, और जाकर उससे छीन लो उसके अस्त्र शस्त्र की विद्या, परेशान करो। तो राक्षस ये करते हैं, पहले तो खुद तपस्या करते नहीं, और दूसरा व्यक्ति कर रहा हो तो उसको डिस्टर्बेंस करते हैं, है ना। तो ऐसे ही कुछ भक्त जो जप कर रहे हो ना ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण, और जो इसका मन नहीं लग रहा हो जप में, हरे कृष्ण कृष्ण देखता बड़ा ध्यान से कर रहा है, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे वो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, वो सोचता है मैं तो कर नहीं रहा दूसरे को भी क्यों करने दूं। तो इस तरह से दुर्योधन ने सोचा कि कैसे मैं इसको तपस्या करने दूं मुका राक्षस को, और कहा इसको पहुंचा दो वहां पर, और अर्जुन को तपस्या करने से रोका। तो उन्होंने तीर मारा खींच के, तो सुअर हुर करके गिर पड़ा, गिरा तो एक स्त्री आई और हंसने लगी अर्जुन सोचते तुमने इसको मारा है, तुमने नहीं मारा इसको, इसको हमारे भीलों के राजा ने मारा है। तो अर्जुन ने जब देखा तो ऑलरेडी उस सुअर के इधर एक तीर घुसा हुआ था। अब लड़ाई ये होने लगी कि ये इसका मालिक है जिसने मारा, मतलब ये विजेता हुआ या ये विजेता हुआ। अर्जुन को बहुत बुरा लगा, बोला मेरी बेइज्जती कर दी, और बोल रही है कि मैंने तीर नहीं मारा, मेरा तीर तो हवा के तेज से ऊपर चलता है ना। जब उन्होंने कहा चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बाल भद्रदम तस्याम निग्रह मन्यम वायु एवं सुदुष्क्रम, अर्जुन बोल रहे हैं भगवान कृष्ण में वायु को रोक सकता हूं, इतनी शक्ति है मेरे पास, तो ये तो बेइज्जती हो रही है। और मुझे द्रोणाचार्य ने कहा था कि तुम्हारे से ज्यादा और कोई बड़ा धनुर्धर नहीं है, सिर्फ एक हो सकता है कर्ण, उसके अलावा उस संसार में तुम्हारी बराबरी का कोई धनुर्धर, ये कौन आया भीलों का राजा जिसने एक तीर मार के मुझसे पहले सूर को नीचे निकाल दिया, तो इसका मतलब ये मुझसे सुपीरियर है। तो वो कहने लगा अहंकार नष्ट हुआ बालक, तो बालक बोल दिया और बेइज्जती, कह रहे आजा फिर हो जाए दो दो हाथ, हाँ क्षत्रिय हूं मैं, कम नहीं हूं, तपस्या करने आया हूं अलग बात है, लेकिन हूं तो क्षत्रिय। तो उन्होंने कहा, लड़की हंसने लगी, ठीक है फिर हो जाए कंपटीशन। तो दोनों का कंपटीशन शुरू हो गया। इधर से वो तीर मारते तो है ना, अर्जुन जब खींच के तीर मारता तो भील ऐसे करता और तीर गिर जाता, और अर्जुन को जब वो मारते आके लगता यहां से खून निकलने लगता, ब्लीडिंग होने लग जाती, और ऐसे कंपटीशन चल रहा है, बार बार वो तीर मार रहे हैं और अर्जुन के तीर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। कह रहा ऐसा क्या हो गया है, मतलब आज तो डूबने वाली स्थिति आ गई, जमीन खुल जाए और मैं गड़ जाऊं अंदर, क्या स्थिति आ गई है। तो बहुत ही ज्यादा वो परेशान था। और इसने समय में क्या हुआ, वहां पर जो है वो लहू लुहान होकर अर्जुन अनकॉन्शियस बताया गया है ना, बिल्कुल एकदम चेतनाहीन होकर धाम से जमीन पे गिरे। जब जमीन पर गिरे, श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, पंच तत्व गौर निताय की जय, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। जब जमीन पर गिरे धड़ाम से, तो अब अचेतनाहीन हो गए हैं। तो अब उन्होंने सोचा कि क्या करूं, इस जंगल में जो है शिव जी की उपासना करने के लिए मुझे भेजा गया था कृष्ण भगवान के द्वारा, कि कृष्ण से तुम जाओ और शिव जी से तुम अस्त्र शस्त्र की विद्या सीख के आओ। तो उसने सोचा चलो मैं शिव जी की उपासना कर लूं, अब तो एंड तक में आ गया है। तो उसने बालू रेत जो थी उससे एक शिवलिंग बनाया वहां पे, और एक फूल पड़ा था, फूलों की माला, वो उठाकर उन्होंने शिवलिंग के ऊपर डाली, शिवलिंग के ऊपर डाली। जब तक डाल ही रहा था लहू लुहानों के, फिर से बेहोश हो गया। फिर आंख खुली तो देखा शिवलिंग गायब है, और वो जंगलों का राजा हंस रहा है और देखा तो उसके गले में वही माला है जो शिवलिंग के गले। तब वो समझ गया और रोने लगा, ओ आप शूलपाणि, शूलपाणि बताया गया है त्रिशूलधारी शूलपाणि आशुतोष शिव रुद्र, आप आ गए मेरे सामने, आप ही की तो तपस्या करने के लिए मैं बैठा था। तो वो टेस्ट करने आए थे कितना बड़ा धनुर्धर है, तो इसको मैं अस्त्र दे दूं और ये यूज करना ना जानता हो, है ना, जैसे बंदर को कंघी दे दो तो खुजाता रहता है, बोलते नाखून दे दो, तो वाली चीजें मैं दे दूं, अर्जुन को इस्तेमाल करना आता है, उस कैलिबर का है भी कि नहीं। जैसे हमारे मंदिर में दीक्षा देने से पहले 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी कराते हैं, देखते हैं उस कैलिबर का है भी कि नहीं, कि सिद्धांतों का पालन कर पाएगा अपने जीवन में। तो वही टेस्ट करने के लिए शिव जी आए, और फिर शिव जी ने कहा कि ठीक है तुम मुझसे हार गए हो, लेकिन मैं तुम्हारा कैलिबर समझ गया हूं, तुम हो इस लायक कि तुम मेरे अस्त्र का इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर उन्होंने पशुपात अस्त्र प्रदान किया। तो ये पशुपात अस्त्र लेकर और गांडीव लेकर महाभारत का युद्ध आरंभ होता है, और सारे एक सबको सभी लोगों ने अपने अपने अनेकों अस्त्र लिए। तो ये पशुपात अस्त्र जो शूलपाणि भगवान और पार्वती जी की कृपा से, वो जंगल की जो लड़की हंसने वाली थी वो पार्वती थी और राजा शिवजी थे, और फिर शिव और पार्वती ने प्रसन्न होकर पशुपात अस्त्र उन्हें प्रदान किया। अब ये अस्त्र कैसा था इसका वर्णन आता है, बताते हैं। ये शिव काली और शक्ति इन तीनों के मिश्रण से बना हुआ शस्त्र था पशुपात, और ऐसा था ये तब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसके पीछे ऑप्शन था जब सामने वाली सेना में ज्यादा योद्धा हो तो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जब सामने वाली सेना जो है उसमें से कोई व्यक्ति अलग हो जाए सेना को छोड़ करके, तब उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, क्योंकि उसकी सेना हमारे से कम हो तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमसे ज्यादा हो तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कौरवों की सेना कैसी थी, ज्यादा थी, 11 क्षुणी सेना, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कम अगर मेंबर्स हो तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। या फिर हमसे कम ताकतवर हो तो वहां तो बड़े बड़े अधिरथि महारथि योद्धा थे, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, तो वहां इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ में बताया है मन आंखों और शब्दों से चलने वाला ये वाण था, ऐसा मन से चलता था, मन की गति से, जैसे यहां रखा हुआ है और मन से सोचो जाकर लग जाए इनको अपने आप चालू हो जाएगा, हा? और शब्द से बोलो छोड़ना मत सुरेश प्रभु को, गिर जाएगा, या फिर आंखों नेत्रों से धनुष बाण पे चलाओ और इशारा कर दो बस जाएगा अस्त्र। तो इस तरह का अस्त्र जो था दिया गया शिव जी के द्वारा उनको। तो जो जब युद्ध शुरू हुआ तो उसके अंदर अभिमन्यु 16 वर्ष का अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र, उसको चक्रव्यूह के अंदर फंसा दिया गया, क्योंकि जो अर्जुन का पुत्र थे अभिमन्यु, उन्होंने अपनी माता के गर्भ में क्या सुना था, चक्रव्यूह की रचना। लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलने की रचना जब सुनाई जा रही थी अर्जुन के द्वारा, तो उनकी पत्नी को निंद्रा आ गई, और नींद आने के कारण क्या हुआ, वो सुन नहीं पाए। कहते हैं माता के जब कान खुले होते हैं तो गर्भ में बच्चा सुनता है, जब माता सोती है तो सोता है, जब खाती है तो खाता है, तो वो सो गई तो बच्चा भी सो गया। और फिर वो गर्भ में रहकर चक्रव्यूह की रचना तो सुन पाया, लेकिन उसको तोड़ना सुन पाया, लेकिन बाहर निकलना नहीं सुन पाया। और इसी का फायदा उठाते हुए सारे योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु को, क्योंकि वो बहुत बड़ा क्षत्रिय था, उन्होंने कहा इसको मार दो, इसके दुख से अर्जुन मर जाएगा। ये होता है अटैचमेंट, है ना, ये अटैचमेंट आसक्ति संसार से, है ना। द्रोणाचार्य कैसे मारे गए, सिर्फ इतना बोला गया अश्वस्थामा हताहते, है ना, इतना बोलने से द्रोणाचार्य गिर गए, क्योंकि उनको अपने पुत्र गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, शास्त्र और शस्त्रों के ज्ञाता हैं, लेकिन आसक्ति रहित नहीं है। अश्वत्थामा में इतने आसक्त हैं कि अपने बेटे की मृत्यु के कारण रथ से उन्होंने सोच रखा था बेटा मर गया तो फिर जी के क्या करेंगे, अरे क्या होगा, भगवान के लिए जीना चाहिए, बेटा बेटी पत्नी परिवार ये तो आना जाना है, हाँ ये आएंगे जाएंगे, ट्रेन का सफर है, दिल्ली से चढ़े बॉम्बे तक जाना है, कुछ लोग अच्छे लगेंगे कुछ लोग बुरे लगेंगे, समय आने पर सब अपने डेस्टिनेशन पे उतर जाएंगे, लेकिन उनके लिए आसक्त होना ये सबसे बड़ा गलत चीज बताई गई है। लेकिन क्या रोना नहीं चाहिए, प्रभुपाद जी से भक्तों ने प्रश्न पूछा, प्रभुपाद जी बोले रोना चाहिए क्योंकि इमोशंस इंपॉर्टेंट है, अगर हम इमोशन लेस हो जाएंगे तो हम फिर कृष्ण के लिए भी इमोशन लेस हो जाएंगे, इमोशंस होने चाहिए, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, रोना आया उस स्थिति को देखते हुए इमोशनल है, भक्त को इमोशनल होना चाहिए, सॉफ्ट हार्टेड होना चाहिए, अगर हम रो भी नहीं सकते तो हमारा हृदय तो पत्थर जैसा हो गया ना, तो रोना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि हमारी भक्ति छूट जाए, 16 माला छूट जाए, ग्रंथ नहीं पढ़ रहा, मन नहीं लग रहा, क्या हुआ, बोल 6 महीने हो गए, 6 महीने पहले मेरे पिताजी गुजर गए, अरे गुजर गए गुजर गए, उसके लिए भक्ति छोड़ने का क्या मतलब। तो ये अर्जुन को शिक्षा दी भगवान ने। तो द्रोणाचार्य बहुत आसक्त थे, तो इस तरह से जब उन्होंने अभिमन्यु को फंसा लिया चक्रव्यूह की रचना में, और जब बाहर निकलने लगे तो अर्जुन उसको आता नहीं था, वो फंस गया, और अर्जुन मदद नहीं कर पाया, क्योंकि अर्जुन को किसने फंसा दिया, जयद्रथ ने, जयद्रथ उनको लेकर इधर उधर इधर उधर इधर उधर भागता रहा, और वो जयद्रथ से बोले रुक जा, और रुक नहीं रहा, इधर उधर भाग रहा है, जबकि तरीका क्या है, सेना में लड़ाई सामने सामने खड़े होकर होती है, लेकिन वो भाग रहा है, और जयद्रथ के भागते 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 वो ध्यान ही नहीं दिया अर्जुन ने कि अभिमन्यु फंस गया चक्रव्यूह में, और जयद्रथ ने और सारे उन्हें मिलकर बड़े बड़े अधिरथि महारथियों ने अपने रथ से उतरकर हंसते हुए बीच में खड़े करके अभिमन्यु 16 साल के लड़के को, जहां 70-80 साल के बड़े योद्धा थे, खड़े करके उसकी गर्दन काट दी, पीछे से वार किया, आगे से वार किया, इतना मारा उसको, काट डाला, और बड़े खुश हुए, हम योद्धा हैं, गलत तरीके से उन्होंने इस कार्य को किया। तो अर्जुन ने जब बहुत दुखी हुआ रथ से उतर गए और रोने लगे कि मेरा पुत्र नहीं रहा, तो भगवान कृष्ण ने कहा तुमको तो मैंने युद्ध शुरू होने से पहले क्या सुनाई थी, भगवत गीता। गीता सुनने के बाद भी इतने आसक्त हो अपने पुत्र में, वो तो भगवत धाम चला गया, क्योंकि वो तो तुम्हारा पुत्र है, मेरे संरक्षण में है, तुम क्यों इतनी चिंता कर रहे हो, एक ही तो कर्तव्य है आत्मा का, वापिस भगवत धाम जाना, फिर क्या चिंता का विषय है। तो रोना है, ठीक है रो लिए, अब चढ़ो रथ के ऊपर वापस और युद्ध करो। तो फिर जब वापस युद्ध में आते हैं तो निर्णय लेते हैं कि आज अगर सूर्यास्त से पहले मैंने उसका वध नहीं किया जयद्रथ का, तो फिर मैं क्या करूंगा, खुद सुसाइड कर लूंगा, मर जाऊंगा। तो सब लोग हैरान हो गए, अरे जयद्रथ को मार देगा, ऐसा निर्णय ले लिया। अर्जुन है तो होशियार, लेकिन जयद्रथ क्या है, चालू है, भाग रहा है इधर उधर इधर उधर, पकड़ में नहीं आ रहा है। सामने आ जाए तो एक तीर से मार सकते हैं। तो अब जयद्रथ भाग रहा है, भाग रहा है, और वो समझ गए कौरव कि अगर आज जयद्रथ को जैसे भी छुपा दें तो फिर ये मरेगा नहीं और अर्जुन तो मर ही जाएगा, बस फिर तो विजय हमारी है। हरी बोल, बड़े खुश हो रहे, विजय विजय, और बड़ा सोच में पड़ गए। और इतनी देर में जयद्रथ भाग रहा है और अर्जुन उसके पीछे पीछे, पूरा दिन कुछ युद्ध नहीं किया, बस एक दिन वेस्ट हो रहा है, जयद्रथ 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 ढूंढ रहे हैं और सब लोग लगे पड़े और ये अकेला ढूंढ रहा है कहां है कहां है कहां है। इतनी देर में भगवान कृष्ण ने कहा अब तो सूर्यास्त का समय आ रहा है, अभी तो सूर्यास्त हो जाएगा और अर्जुन को अपने शरीर त्यागना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, चाल चली। अरे जब ये चाल चलते हैं तो हम भी चल सकते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया, सुदर्शन छोड़ दिया, सुदर्शन गया और जाकर ऊपर जो सूर्य था उसके ऊपर उन्होंने कवरिंग बना दी एक, और संध्या का समय हो गया। अब वो इतने लिप्त थे, टाइम घड़ी वड़ी तो होती नहीं थी, सूर्य पे चलते थे, कितनी देर किरणें रह गई है, घड़ी तो थी नहीं, चेक कर ले। तो सूर्य के अनुसार उन्होंने सोचा क्या हो गया, ये संध्या वक्त, संध्या काल आ गया है, और जयद्रथ जाकर छुप गया। और फिर जब छुपा हुआ था, अर्जुन को मिल नहीं रहा था, जैसे सूर्यास्त हुआ बड़ी जोर से निकल आया, अर्जुन अब कर लो अपनी आत्महत्या, हार गए तुम, हमारी विजय हुई, हमारी विजय हुई। जब इस तरह से कह रहा था, अब इसके साथ में एक वरदान था जयद्रथ के मारने के पीछे। जयद्रथ के जो पिता थे उनका नाम बताया गया वृधक शास्त्र। तो वृधक शास्त्र जो थे उन्होंने ये अपने तपस्या से फल मांगा था। उन्हें पता था, राजा थे वैसे बहुत बड़े, उनको पता था बचपन में कि मेरा जो पुत्र है ये जब बड़ा होगा तो इसको कोई बुरी तरह से मारेगा और ये खराब होगा, तो उसके लिए पहले वरदान मांगा, और उन्होंने शिवजी से ही वरदान मांगा था। शिवजी की प्रार्थना करी शूलपानी भगवान की और उनसे वरदान मांगा कि भगवान मेरे पुत्र को इमोर्टेलिटी, अमरता का वरदान दे दो। तो शिव जी हंसने लगे, कहा ब्रह्मा के पास भी नहीं है, दुर्गा के पास भी नहीं है, तो मैं तुमको कैसे दे दूं, ये तो असंभव वस्तु तुमने मांगी है। कह रहे फिर ऐसा कुछ कर दो कि कोई उसे मार ना सके। उन्होंने कहा ये मैं वरदान दे सकता हूं, है ना। असुर तो बड़ा दिमाग लगा के वरदान मांग लेते हैं, लेकिन भगवान जो बुद्धि देने वाले हैं, ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान बुद्धि देने वाले गुमराह कर देते हैं। तो उसने ये वरदान मांगा कि कैसे भी मेरा पुत्र ना मरे। तो शिव जी ने कहा मैं वरदान देता हूं कि जो भी व्यक्ति तुम्हारे पुत्र की गर्दन काट करके जमीन पे गिराएगा उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो अब जयद्रथ जो था वो सामने आया, उसने कहा अब तो तुम बार मार भी नहीं सकते, क्योंकि तुम मारोगे और गर्दन मेरी नीचे गिर गई तो तुम्हारे भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। अर्जुन का मरना तो निश्चित हो गया और सब पांडव घबरा रहे हैं, अब कृष्ण क्या करेंगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे होगा। इतनी देर में शिव और कृष्ण कृष्ण और अर्जुन जानते थे नर नारायण कि हमारे पास एक अस्त्र है, उसका नाम क्या है, पशुपात अस्त्र। उन्होंने उस अस्त्र को निकाला, क्योंकि ये किसकी गति से चलता था, मन की गति से, आंखों से और शब्दों से। तो उन्होंने उसके ऊपर चढ़ाया और कहा इसकी गर्दन को लिफ्ट करना, इसकी गर्दन को लिफ्ट करना यहां से, और कहां लेके जाना, जहां इसके पिता तपस्या कर रहे हैं वृधक शास्त्र, वहां जाना, उनकी गोदी में जाकर इसको गिराना। हाँ, जब गोदी में गिरा, जमीन पे तो नहीं गिरा, कहां गिर रहा है, गोदी में। और जब वो देखेंगे ये क्या है, और फिर जब उसे नीचे फेंकेंगे जमीन पे, तो किसकी खोपड़ी उड़ जाएगी, उसके पिताजी की। पूरा प्लान बना लिया उन्होंने। और अर्जुन ने जैसे ही भगवान कृष्ण ने जैसे ही वो जयद्रथ बाहर आया और चिल्लाने लगा, बस अर्जुन आत्महत्या का समय आ गया, अब कूदो अपने रथ से, छोड़ दो इस गांडीव को, हार गए तुम। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन हटाया और सूरज फिर निकल आया। तो उन्होंने कहा पार्थ समय अभी शेष है, मारो। तो उन्होंने उठाया अपना पशुपात अस्त्र और चौंग जैसे छोड़ा, गर्दन कटी जयद्रथ की और उड़ रही है, सब देख रहे हैं कि उसके ऊपर गर्दन गिर नहीं रही, क्योंकि ये पशुपात अस्त्र था, नॉर्मल वो नहीं, एरो नहीं था। वो लेके जा रहे हैं और वहां बैठे हैं वृधक शास्त्र अपनी तपस्या में लीन, धड़ाम से उनके गोदी में आके जयद्रथ की गर्दन गिरती है, कहते हैं मेरा पुत्र, ऐसे जैसे फेंकते पूरा उनका भी शरीर उड़ जाता है पूरा। जयद्रथ भी नाश, वृधक शास्त्र भी, पूरी फैमिली परंपरा ही नष्ट करा दी भगवान, आगे कोई ऑप्शन ही नहीं, कोई और आ जाएगा, समाप्त पूरा। तो ये भगवान की शक्ति है जो कि भक्तों को समझना चाहिए। कृष्ण की जो प्लानिंग है ना, उसके ऊपर निर्भर रहना चाहिए हमको, इधर उधर ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। अरे माला तो कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, डिप्रेशन है प्रभु जी, हो नहीं पा रहा। भागवतम कहती है, पहले पांचवें स्कंद में आता है, इहायस्य हरेदास्य कर्मणा मनसा गिरा निखलस्तो व्यवस्था सो जीवन मुक्त सा उच्यते। जो व्यक्ति इहायस्य हरेदास्य, जो हरि का दास है, किस तरह से, कर्मणा मनसा गिरा, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरह से जो भगवान का भक्त है ना, खाली कर्मों से होते हैं, कुछ एक्शन से होते हैं, लेकिन मन से नहीं होते। प्रभु जी मन नहीं लग रहा, तो मन जब लगेगा तभी एक्चुअली धैर्य दास कहलाएंगे। तब तक मन नहीं लगेगा, तब तक हम सिर्फ कर्मणा से, कर्म एक्शन से कर रहे हैं भक्ति। हाँ, और वचन श्लोक याद नहीं, अभी हम पीछे अपनी क्लास में चर्चा कर रहे थे, श्लोक याद नहीं है, तो वचन से भी भगवान का गुणगान गाना चाहिए। हाँ, देववाणी संस्कृत में भगवान का गुणगान गाना चाहिए। हाँ, भगवान के आगे खड़े होकर ये नहीं बोलना चाहिए, हाँ बातें करते रहते हैं, अरे गोल्डन वाला लगा दिया, अरे देखो देखो बादाम वाला सही लग रहा है, बढ़िया है, ये बातें नहीं, भगवान का गुणगान गाना चाहिए। हाँ, ब्रह्म संहिता जैसे श्लोक है, जगन्नाथ अष्टकम, युगल अष्टकम, इसके कुछ चैतन्य चरितम, इसके कुछ प्यार कहते हैं, प्रार्थना का एक तरीका होता है, ये स्टेप बाय स्टेप है। पहले भगवान की गुणगान गाने चाहिए, फिर उसके बाद में दूसरों के दुख गाने चाहिए उनको दूर करने के लिए, उसके बाद तीसरा स्टेप है अपनी दुख भगवान के सामने रख सकते हैं, अपनी प्रार्थना है। हाँ, तो पहले भगवान का गुणगान। हमारे से कोई गाड़ी की चाबी मांगने आए तो पहले बोलेगा, हरे कृष्णा प्रभु जी, बढ़िया छा रहे वास्तव, बढ़िया लग रहे प्रभु जी, प्रभु जी वो पता है आपको बहुत दुख है संसार में, पता है आपको प्रभु जी मेरी गाड़ी पंचर हो गई, पड़ोसी की गाड़ी पंचर हो गई, हो गया। हाँ प्रभु जी, एक रिक्वेस्ट थी प्रभु जी, चाबी मिलेगी गाड़ी वो लास्ट में है ऑप्शन, हम भगवान से पहले बार में मांग लेते हैं। तो प्रार्थना करने का तरीका है, भगवान के सामने आए तो भगवान के आगे आगे बोलना चाहिए, कोई भी अपनी प्रार्थना गा सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं भगवान के आगे आकर, कि प्रेमंजन छुरिता भक्ति विलोचने ना आघम, प्रेमंजन छुरिता भक्ति विलोचने ना संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। ऐसी प्रार्थना करें भगवान के आगे आके, और फिर बोले प्रभु जी, हे भगवान, हे रुक्मिणी द्वारकाधीश, हे जगन्नाथ बलदेव सुहृदय, हे गौरनिताई, हाँ भक्तों का मन नहीं लग रहा, मैं प्रचार कार्य के लिए रोज आरती में ये क्षण ले लेता हूँ, निर्णय जाऊंगा, सब लोगों को भक्त बनाऊंगा, पर मैं खुद ही नहीं बन पा रहा, दूसरों को कैसे बनाऊं, कृपा करें, कुछ तो बताएं, कुछ तो समझाएं, अपने शरण में लाएं, आपने तो गीता में लिख दिया शरणागत हो जाएगा उसके सारे पाप भर लूंगा, मैं पापी पतित जीव, हाँ मुझे अपने शरण में ले लीजिए, आपके शरण में आने का तरीका बता दीजिए, आ नहीं पा रहा हूं, ये प्रार्थना है। ऐसे तो पहले गुणगान, फिर प्रार्थना है दूसरों के लिए, फिर अपने लिए, ये तरीका भक्तों ने बताया है, मतलब मेरा कोई पर्सनल माइंड नहीं है, भक्त बोलते हैं ऐसे कैसे करना चाहिए। तो कर्मणा मनसा गिरा, इस तरह से जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हो सकता है कि भगवान हमारी बातों को सुनने लग जाए, है ना। जैसे होता क्या है, भक्ति में जब नए नए आते हैं तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जब समय काल निकलने लगता है, सेवाएं बढ़ने लगती हैं, तो साधना की तरफ से, शास्त्रों की तरफ से ध्यान हटने लगता है। एक भक्त बोल रहे थे, यार मैं तो हर जगह एक ही प्रवचन देता हूँ। तो हमने बोला, क्यों प्रभु जी, क्या हो गया? खैर टाइम ही नहीं मिलता इतनी सेवाएं पढ़ने का, अब तो बेइज्जती लगने लगी है। भक्त भी बोलते हैं, प्रभु जी कुछ नया सुना दिया करो, बार बार वही स्टोरी सुनाते। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, वो भक्त की पढ़ने की प्रॉब्लम है, रीडिंग नहीं करते। रीडिंग स्क्रिप्चर्स शास्त्र जब पढ़ने लगेंगे ना, अगर रोज हम एक घंटा पढ़े ना तो हम रोज क्लास दे सकते हैं। वही एक घंटा जो कल पढ़ा है वही तो आज बोलना है, क्या दिक्कत है? तो लेकिन हम पढ़ नहीं रहे, इसका प्रॉब्लम है। वो बार बार रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने प्रभु जी एक महीने से कुछ पढ़ा नहीं है, तो पढ़ने लगेंगे तो रिपीट होना बंद हो जाएगा, भक्त ऐसे बोल देते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी एक बार, मैं एक आता है उनका पास टाइम स्टॉकहोम यूरोप में, वहां पर एक मंदिर खोला था जिसका नाम था स्पंगा टेम्पल, और उसके अंदर बहुत छोटा सा मंदिर था, एक घर ड्रॉइंग रूम के अंदर ही मंदिर बनाया था गौरनिताई का। तो वहां पर प्रभुपाद जी प्रवचन देने के लिए, श्रीमद भागवत कक्षा देने के लिए आए, और जैसे ही बैठे तो वहां पर उन्होंने देखा जो अंग्रेज विदेशी भक्त है वो अरेंजमेंट में बहुत ध्यान देते हैं, भक्ति कैसी है उससे मतलब नहीं है, यहाँ LCD होना चाहिए, यहाँ स्पीकर होना चाहिए, यहाँ डेकोरेशन होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए, वहां पर ऐसे पताके होने चाहिए, यहाँ स्टॉल होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए, हाँ तो ये सब लगा होना चाहिए, लेकिन हरे कृष्णा हो रहा है नहीं हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी आए और प्रभुपाद जी ने देखा नाइस अरेंजमेंट, प्रभुपाद खुश हुए, आई एम हैप्पी। प्रभुपाद बैठे तो माइक्रोफोन रिकॉर्डर्स कैमरा सब लगा दिया उन्होंने। प्रभुपाद जी ने बोला जैसे ओम, प्रभुपाद बोल रहे आवाज ही नहीं आ रही, तो भक्त लगे पड़े इधर का कॉर्ड निकाल इधर लगा, इधर का कॉर्ड निकाल इधर लगा, आवाजें आ रही हैं इधर, टाइम निकल रहा है 8:15, प्रभुपाद जय अपने करते जा रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा किसी को, पूरा टेम्पल हॉल भरा हुआ है। आप कह रहे क्या हो गया, तो प्रभुपाद ने कहा ऐसे उठाकर माइक को फेंक दिया साइड में और प्रभुपाद ने वहां पे कहा भव आरंभे लघु क्रिया। आरंभ तो बड़ा भव होता है विशाल, लेकिन लघु क्रिया जब क्रिया करने पे आते हैं तो इतनी छोटी सी हो जाती है। और फिर उन्होंने वहां पर चाणक्य पंडित का एक श्लोक कोट किया प्रभुपाद जी ने, वहां पर उन्होंने कहा अजा युद्धा मुनि श्राद्धा दंपत्त कला मेघा गर्जने। प्रभुपाद जी ने कहा ये चार चीजें जो हैं इनकी शुरुआत तो बड़ी स्ट्रांग होती है लेकिन इसका अंत बहुत वीक होता है। भव आरंभे लघु क्रिया, तो प्रभुपाद जी ने बताया अजा युद्धे, अजा का मतलब पता सकते हैं कौन, अजा बकरी। तो जो बकरी है गोट, वो जब बड़े बड़े लड़ाई होती है ना, बकरों की लड़ाई होती है, देखते हैं कई लोग तो देखने के लिए खड़े हो जाते हैं, पूरा चौक लगा जाता है, चौक पे खड़े हो जाते हैं और वो प्रभुपाद जी आवाज निकाल के सुना रहे हैं अपने प्रवचन में, लड़ाई करते हैं और दो बकरे लड़ते हैं और लोग ये वाला मेरा ये वाला तेरा, ना वो उसका ना वो उसका, लेकिन फिर भी ये मेरा ये तेरा, सफेद वाला काला वाला, ऐसे लगाते रहते हैं टाइम पास और वो थोड़ी देर तक लड़ते रहेंगे और थोड़ी देर बाद कोई आए ना डंडा लेके और बोले हट हट, प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसी आवाज में हट हट, तो वो चले जाएंगे साइड में और 2 मिनट में शांत हो जाते हैं। वो लगता तो है पता नहीं क्या होगा, खून निकल जाएगा, वो मार डालेगा चीर देगा, लेकिन 2 मार टकरे मार के चुप हो जाते हैं। तो अजा युद्ध, अजा का जो युद्ध है वो ऐसा होता है कि शुरू में बड़ा तेज काम, और ऐसे मुनि श्राद्ध है, मुनि लोग जो होते हैं ना जो जंगलों में रहते हैं वो कोई भी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो आज उत्सव है, आज उत्सव है, आज उत्सव है, आज उत्सव है, बड़ा शोर मचता है, सारे मुनि ऋषि को इकट्ठा कर लेते हैं, बाद में खिचड़ी प्रसाद बट रहा होता है मुनि उत्सव मुनि श्राद्ध है। दंपत्य कला, दंपत्य जो है ना हस्बैंड वाइफ, उनका जब झगड़ा होता है ना पड़ोसी सोचते हो अरे बाप रे आज तो डाइवोर्स होके रहेगा, तेरे दिमाग नहीं है, तेरे समझ नहीं आती, तू कैसी है, माला लेके घूमती है, समझ नहीं आती तेरे को, आप बड़ा बनते हो, बोलना तो आसान है करना मुश्किल है, प्रभु जी जाओ जाओ जाओ, लड़ाई चल रही है, लोग भी सोच रहे हैं आज तो डाइवोर्स होके रहेगा पक्की बात। दूसरे दिन देखा दोनों बैठे हैं, प्रभु जी चले मंदिर हरे कृष्णा दंपत्य कला चलेगा लेकिन इसका भव आरंभे लघु क्रिया, होता कुछ नहीं है और मेघ गर्जना, जो सुबह सुबह बादल आते हैं ना तो वो बारिश नहीं करते, वो खाली शोर मचाते, बड़ी आवाजें आती है, आज मेघ बरसेगा, बड़ी बारिश होने वाली है, थोड़ी देर बाद सूरज निकल आता है, सब बारिश बंद हो जाती है, हवाएं चल जाती हैं। तो ऐसे ही प्रभुपाद ने कहा भव आरंभ है, बहुत बड़ा आरंभ होता है, भक्त DYS कोर्स करते हैं, LSM करते हैं, आश्रम में आते हैं, आज तो पता नहीं क्या कर डाले, प्रभु जी को सेवा बता दो, प्रभु जी को सेवा बता दो, अब भगवत गीता पढ़ो प्रभु जी, तो कह रहे ठीक है प्रभु जी आज से भगवत गीता पढ़ना शुरू, हाँ प्रभु जी पक्का भगवत गीता पढ़ेंगे आज से हम, हाँ भगवत गीता बांटना, ठीक है प्रभु जी भगवत गीता बांटेंगे प्रभु जी, बस प्रभु जी आप बोलो प्रभु जी करना क्या है। अब उन्हें तो लगता है पता नहीं कुछ क्या कर देंगे, 1 महीने बाद पूछो प्रभु जी कितनी गीता पढ़ी, प्रभु जी इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ डाला प्रभु जी, 1 महीने में इंट्रोडक्शन, क्या पढ़ा प्रभु जी, ये तो प्रभु जी याद नहीं है प्रभु जी, प्रभु जी आपको आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा है तो उसमें 5 वो बताए गए हैं, शाश्वत अशाश्वत चीजें, 5 अशाश्वत चीजें मैंने पढ़ते ही किया, अशाश्वत चीजें हमारे प्रभु जी हैं, यहाँ पर पता नहीं आए नहीं आज, अशाश्वत शाश्वत चीजें हमारे प्रभु जी, प्रभु जी से पूछा अशाश्वत शाश्वत चीजें कौन सी चीजें हैं जो अशाश्वत हैं, जैसे समय हाँ, प्रकृति, भगवान, कर्म, इसमें से कर्म जो है भगवान ने हमारे पे छोड़ा है, हम चेंज कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें शाश्वत है, उसे चेंज नहीं कर सकते। ये इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में बड़ा बड़ा, अब पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ ले हमें ये मालूम ही नहीं। प्रभु जी ये तो मालूम नहीं, हम अमोघ लीला प्रभु बता रहे थे उस दिन, ऐसे भक्त से पूछा आपने भगवत गीता पढ़ी है, कह रहे हाँ प्रभु जी, बस पढ़ना शुरू कर दिया है। कितने चैप्टर पढ़ लिए, कह रहे प्रभु जी पहला पहला पढ़ रहा हूँ। अच्छा पहला पढ़ रहे हैं, कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं? ये तो याद नहीं, याद नहीं है तो शायद वो वाला पढ़ रहे होंगे 48 49। हाँ हाँ बस वही वाला प्रभु जी, पहले चैप्टर में है ही 46 श्लोक, क्या पढ़ रहे हैं पता ही नहीं है। तो ये पढ़ना को पढ़ना नहीं, भव आरंभ है, आरंभ में तो बड़ा दिखाते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ अभी, भक्त से पूछा हो कि हम ये कर देंगे, प्रभु जी फोन करो, रोज रेड लाइट पे जा रहे हैं प्रभु जी, रोज रेड लाइट पे जा रहे हैं। अब रेड लाइट पे जाकर देख कर आ जाते हैं वहां का व्यवहार वातावरण, जब पूछा कितनी बुक्स बांटी तो बोले 6, मतलब 6 बुक तो घर में बैठा रहता ना, प्रार्थना करता ढंग से, लोग आके घर से ले जाते 6 किताबें उससे, उस 6 किताबें मारना प्रभु जी बहुत। तो भव आरंभे लघु क्रिया, तो इसी तरह से जो है हमें शुरुआत में बहुत बहुत बड़ी भक्ति करने का हम निर्णय लेते हैं लेकिन अंत में हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाएं, किस तरह से, तो ये समाज ये बताकर मैं अभी समाप्त करूंगा। चैतन्य चरितामृत कहती है, अन्य कामी यदा करे कृष्णेर भजन, ना मांगिते है कृष्ण तारे दे सो चरण। अन्य कामना ना करते हुए कृष्ण के चरण, कृष्ण के भजन में जो लगता है, मांगिते है कृष्ण, जो वो कृष्ण को मांगता है, तारे देना श्री कृष्ण चरण, कृष्ण उसको अपनी शरण प्रदान करते हैं। अन्य कामी कुछ और कामना नहीं करनी चाहिए। कृष्ण कहे अमा भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विषय मांगी ए बड़ा मूर्ख। हम वो कह रहे हैं जो मेरे भजन करता है रात दिन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मेहनत करता है, 16 माला जपता है, और जब मांगने का टाइम आता है, दंडवत करने का टाइम आता है, तो मांगता क्या है, मेरी नौकरी लग जाए, मेरी प्रॉपर्टी बन जाए। तो ये अमृत छड़िया, कृष्ण का चरण छोड़कर विषय मांगिया ए बड़ा मूर्ख। चैतन्य चरितामृत कहते हैं वो बड़ा मूर्ख है, भक्ति में लग गया है, अब तूने भव आरंभ कर ही लिया है तो लघु क्रिया मत कर, अब इसको बड़ी क्रिया कर, भव क्रिया करो, बड़ी क्रिया करना चाहिए, उसके लिए भगवान के भजन में दृढ़ता पूर्वक लगना चाहिए। आमी विज्ञ ए मूर्ख विषय की ना दीबा, स्वचरण अमृत दिया विषय भूलिया। तो भगवान के चरण अमृत को छोड़ करके विषय भूल जाएगा व्यक्ति, चरण अमृत का पान, तुलसी की सुगंध, मालाओं की सुगंध, हरे कृष्ण का जाप, भक्तों का संग, ऐसी क्रियाओं में जो लगेगा व्यक्ति वो अपने इस विषय को भूल सकता है ना। काम लागी कृष्ण भजे पाए कृष्ण रसे, काम छड़ी दास है अभिलाषे। भक्त की अभिलाषा है काम समाप्त हो जाए मेरे जीवन से, इच्छाएं समाप्त हो जाए। जैसे प्रहलाद महाराज से पूछा गया कि आपकी क्या इच्छा है प्रहलाद, तो नरसिंह भगवान को प्रहलाद ने कहा भगवान एक ही इच्छा है कि अब मांगने की इच्छा समाप्त हो जाए, मेरी ये इच्छा है कि मेरी इच्छा ही समाप्त हो जाए, है ना। तो कोशिश ये करें बार 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 कि हम बार बार गलती करते हैं, प्रभुपाद जी कहते थे रोज गिरते हैं तो फिर रोज खड़ा होना चाहिए। जब साइकिल चलानी सीखते हैं तो उसमें कई बार गिरते हैं, गिरने का मतलब ये नहीं अब गिल्टी हो गए अब तो सीख ही नहीं सकते हैं, तो कभी नहीं सीख पाएंगे। गिल्टी होकर गिर गए तो फिर दोबारा खड़े होना चाहिए दूसरे दिन, और फिर ध्यानपूर्वक लगना चाहिए उस सेवा में, उस चीज के अंदर, फिर गिर जाएंगे फिर। तो प्रभुपाद कहते थे फॉल एवरी नाइट एंड वेक अप इन मॉर्निंग एवरी डे, दोबारा से रात को गिर गए कोई बात नहीं, दोबारा सुबह उठ जाओ, तो सुबह उठकर फिर से लगो, गिल्टी होकर गिरना नहीं चाहिए। गिल्टी होकर गिर गए तो खत्म हो जाएगा। बहुत लोग भक्त कहते हैं प्रभु जी हम तो कर ही नहीं पा रहे, अब तो लगता है हमसे होगा ही नहीं, गिल्टी हो रहे हैं, हम छोड़ ही देते हैं, इससे अच्छा तो छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरिया व जात है सिल पर पड़त निशान। सिल पर निशान पड़ेगा एक दिन, ये जो भगवान का भजन है, ये भगवान का आनंद प्रेम है, ये हमारे हृदय में आएगा। हाँ, तो इसके लिए क्या करना है, जो भगवान है भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करनी है। तो जिस तरह से यहाँ पर बता रहे हैं कि उन्हीं के प्रताप था कि मैं युद्ध में शिवजी तथा उनकी पत्नी के सामर्थ्य हुआ, इस तरह से मुझ पर प्रसन्न हुआ, उन्होंने मुझे अपने निजी अस्त्र प्रदान किए। तो भगवान की कृपा से शिव जी की उन्होंने उपासना करी और उनको पशुपात अस्त्र मिला। तो हम भी अगर भगवान कृष्ण की प्रार्थना करें तो उससे हमें भी जीवन में अस्त्र नहीं मिलेंगे, शास्त्र मिल जाएंगे, शस्त्र नहीं मिलेंगे लेकिन शास्त्र मिल जाएंगे। शास्त्र पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो भगवान को समझने के लिए शास्त्र इंपॉर्टेंट है। तो भगवान से बोलना चाहिए, भगवान हम आपका अनन्य भजन करते हैं, आप हमको बुद्धि प्रदान करें कि हम इन शास्त्रों को समझ पाए, हमें भक्तों का संग प्रदान करें। है? जैसे पूछा गया था रामानंद राय से, चैतन्य चरितामृत में आता है, चैतन्य महाप्रभु ने पूछा रामानंद राय आप बताइए कि सबसे बड़ा दुख क्या है संसार में, तो रामानंद राय ने कहा भक्तों का संग समाप्त हो जाना ही सबसे बड़ा दुख है। पैसा समाप्त हो जाए कोई टेंशन नहीं, घर समाप्त हो जाए कोई टेंशन नहीं, भक्तों का संग समाप्त हो जाए ना ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ये सबसे बड़ा दुख है। और हनुमान जी से पूछा जाता है सबसे बड़ा दुख क्या है, तो हनुमान जी अब बताते हैं सबसे बड़ी विपत्ति सोई जा दिन सुमिरन भजन न होई। जा दिन मेरा स्मरण नहीं होता, जिस दिन मेरा भजन नहीं होता उस दिन लगता है कि आज तो डूब मरना चाहिए, विपत्ति है। लेकिन लोगों को तो लगता है जिस दिन भजन करना पड़ता है, मंदिर आना पड़ता है, क्लासों में आना पड़ता है, प्रवचन में आना पड़ता है, उस दिन विपत्ति लगती है, तो उल्टा है। तो इसलिए चाहते हैं अपने जीवन को अच्छा चलाना, तो भगवान के शरण में रहें, ध्यान पूर्वक जप करें। और जो इसका दूसरा पार्ट बताया गया है, देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट किए और इसके अतिरिक्त मैं से वर्तमान शरीर से स्वर्ग लोक पहुंच सका। तो जो अर्जुन थे ये स्वशरीर बताया गया है कि स्वर्ग लोक में पहुंचे हैं, स्वशरीर। सब लोग आत्मा को त्यागते हैं और आत्मा निकल कर जाती है और फिर उसको यातना शरीर या दिव्य शरीर प्राप्त प्रदान किया जाता है। लेकिन अर्जुन और पांडवाज ये गए हिमालय की साइड से हरिद्वार, ऋषिकेश, स्वर्ग रोहिणी और फिर आगे चलते चले गए और फिर ऊपर वहां जाकर इन्होंने यमराज ने इनको एंट्री दी है स्वर्ग लोक के अंदर, वहीं से डायरेक्ट, है ना। तो ये तभी हो पाया जब कृष्ण की भक्ति करी उन्होंने अपने जीवन में। तो हम हमारी ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि हम भी स्वर्ग में जाएं या हम वहां जाएं, हमारी तो एक ही इच्छा होनी चाहिए कि जहां रहें वहां भक्ति कर सके। ये भक्ति का जो अमृत है ये बड़ी मुश्किल से मिलता है, सबको नहीं मिलता, सौभाग्यशाली व्यक्तियों को, सौभाग्यशाली व्यक्तियों को मिला। ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जीव, बार बार इसको सुनते हैं, भाग्यवान है हम लोग। लोग बोलते हैं अरे बड़ी टेंशन है, दुर्भाग्यशाली हूं, नहीं आप भाग्यवान हैं। ब्रह्मांड में घूमने के बाद आपकी आत्मा ने अनेकों अनेकों शरीर प्राप्त करने के बाद अब मौका मिला है कि आप भगवान का भजन कर सके। इसको ऐसे मत गुजार दीजिए, थोड़ा सा सिंसियर होइए और अपने भजन साधन में लगिए, सदा बोलते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताय की, पद पावन श्रील प्रभुपाद की, निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरे कृष्ण।